بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رات جشن کی رات ہے، عید کی رات ہے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مل کے دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ امام زمانہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے جشن کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجان. آئیے سب مل کے دعائے امام زمانہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذان محترم، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی مختلف آیات میں مسلسل عظمت رسول اور اطاعت رسول کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرا رسول کون ہے، میرے رسول کا مقام کیا ہے، میرے حبیب کی عظمت کیا ہے، میرا حبیب کون ہے، اس سے محبت کا کیا فائدہ ہے. لیکن بار بار مسلسل اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہتا گیا کہ دیکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، اگر دنیا چاہتے ہو، دنیا میں خوشی چاہتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، اگر آخرت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، اگر جنت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور اگر تم میرے حبیب کی مخالفت کرو گے، اگر تم رسول خدا کی مخالفت کرو گے تو چاہے جتنی نمازیں پڑھنی ہو پڑھ لو، چاہے جتنے روزے رکھنے ہوں رکھ لو، وہ عبادت تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. تم اگر خود کو مسلمان کہو اور میرے حبیب کی اطاعت نہ کرو، اگر خود کو مسلمان کہو اور میرے حبیب کو تکلیف دو، اگر خود کو مسلمان کہو اور اگر میرے حبیب کی توہین کرو، میرے حبیب کے ساتھ بدتمیزی کرو، تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. بلکہ اللہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے، دیکھو میرے حبیب کے ساتھ محبت کرو، میرے پیارے حبیب کے ساتھ پیار کرو. مسلسل مختلف آیات میں بتایا گیا کہ رسول کے ساتھ محبت ہی عبادت ہے. اسی لیے شاعر بڑے پیارے انداز سے کہتا ہے کہ جس کے دل میں मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो मोहम्मद की मोहब्बत की जरूरत है। जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्रे खुदा में ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। यानी अगर इबादत चाहते हो, तुम्हारी कबूल हो, तुम्हें मोहम्मद के साथ मोहब्बत की जरूरत है, तुम्हें हबीब खुदा के साथ मोहब्बत की जरूरत है। अगर रसूल से दिल में मोहब्बत ना हो तो कोई इबादत कबूल नहीं होगी। लेकिन अब मोहब्बत की भी किस्में हैं, आप जानते हैं। एक है मोहब्बत सिर्फ जबानी मोहब्बत, भाई जबान से कह दी यार रसूल अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत हकीकी क्या है? हकीकी मोहब्बत यह है कि जैसे जबान से कहा यार रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे इश्क है, मुझे आपसे प्यार है यार रसूल खुदा, तो जब रसूल खुदा कोई हुक्म भी दे तो वहां पर हम भाग न जाएं, वहां पर ये ना कहें कि अभी टाइम नहीं है रसूल खुदा, वहां पर ये ना कहें कि यार रसूल अल्लाह मूड नहीं है। नहीं, मोहब्बत हकीकी यही है कि जहां रसूल का हुक्म आ जाए वहां इताअत भी हो जाए। मोहब्बत का तकाजा ही यही है ना कि भाई आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं आप उसकी इताअत करते हैं। और अल्लाह ने कहा देखो अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया में या आखिरत में, मोहब्बत रसूल और हकीकी मोहब्बत रसूल जो मवद्दत है, जिसका कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, भाई कोई अजर रिसालत में अल्लाह ने कोई चीज नहीं मांगी मगर मवद्दत मांगी। मवद्दत क्या है? मोहब्बत का सबसे आला दर्जा कि देखो मवद्दत करो रसूल खुदा के साथ, मवद्दत करो अली के साथ, मवद्दत करो बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, मवद्दत करो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। मवद्दत क्या है? यानी इताअत का आला तरीन जो दर्जा है वो मवद्दत है। यानी जहां हम हर शे कुर्बान कर देते हैं मवद्दत रसूल खुदा में, हर शे कुर्बान कर देते हैं मवद्दत पंचतने पाक में, ये अल्लाह का तकाजा है। और फिर अल्लाह ने कहा देखो अगर तुम कामयाबी भी चाहते हो, दुनिया की कामयाबी या आखिरत में कामयाबी, तो क्या फरमाया? लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। देखो अगर चाहते हो कामयाबी तो देखो रसूल की पैरवी करोगे उसी में कामयाबी मिलेगी। अगर चाहते हो आबाद रहो दुनिया में भी आखिरत में भी, तो रसूल की पैरवी करो उसी में कामयाबी है, उसी में आबादी है। और अगर चाहते हो आखिरत में भी खुश रहो तो रसूल की पैरवी करो। अगर रसूल की पैरवी नहीं की तो फिर तुम कभी कामयाब नहीं होगे। एक जुमला हदिया करूं रसूल की पैरवी में। देखिए हम पे एतराज करते हैं ना कि आप इतना अली अली क्यों करते हैं, आप इतना अली का जिक्र क्यों करते हैं, आप इतने आशिक़े अली क्यों हैं, आप इतने इश्क़े अली में दीवाने क्यों हो जाते हैं। हम तो इश्क़े अली में इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम ये कह देना शुरू कर देते हैं कि क्या बताएं तुम्हें, है किधर जिंदगी, है अली जिस तरफ है उधर जिंदगी, देखो हरगिज न छोड़ो दरे मुर्तजा अली वरना हो जाएगी दर बदर जिंदगी। ये है हमारा इश्क अली मौला के साथ कि भाई डरे अली को ना छोड़ो। अब हम पे एतराज करते हैं कि तुम इतना अली अली क्यों करते हो, इतना इश्क अली में दीवाने क्यों होते हो, तो हम जवाब में यही कहते हैं अल्लाह ने कुरान में हमें यही सिखाया कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसन, रसूल खुदा तुम्हारे लिए उसवा हसना है। यानी क्या मतलब? यानी जो रसूल करे वो तुम भी करो, रसूल की पैरवी तुम करो, रसूल की इताअत तुम करो। अब हम पे एतराज न करना हम इतना अली अली क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने सीरत रसूल को उठाया कदम कदम पे देखा रसूल खुदा भी अली अली कर रहे हैं, कदम कदम पे देखा कि अल्लाह के रसूल भी अली अली कर रहे हैं, तो अब हम पे एतराज ना हो। हम तो असल में हकीकत में रसूल खुदा की इताअत कर रहे हैं। सलवात पढ़ी बआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहु। हम पे एतराज करते हैं ना कि भाई इतना अली अली क्यों करते हो, अली को मौला क्यों मानते हो। भाई अब हम पे एतराज ना हो, हम तो असल में रसूल के इताअत करने वाले हैं, रसूल की इताअत कर रहे हैं, क्योंकि रसूल ने कहा जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। हम तो जो रसूल ने बताया उस पर अमल कर रहे हैं, जो रसूल ने सिखाया हम उसी पर अमल कर रहे हैं, हम रसूल की इताअत कर रहे हैं, रसूल ने जो जो सिखाया हम रसूल की पैरवी करते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। इताअत रसूल में हम आशिक अली हो गए, इताअत रसूल में हम आशिक पंजतन हो गए, इताअत रसूल में हम आशिक अहले बैत हो गए। जो रसूल ने सिखाया हम
हम उस पे अमल कर रहे हैं। लेकिन अजान मोहतरम बस ये बात याद रखिए, कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है, हाँ जबान से तो हम खुद को रसूल का पैरोकार कहें और खुदा न खास्ता हमारा अमल जो है, हमारे एक्शंस जो हैं वो रसूल के पैरोकार वाले न लगे, ये खतरनाक बात है। देखिए आज जश्न का माहौल है, जश्न का दिन है, शब जश्न है, ईद की रात है, इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि आज ईद की रात में रसूल खुदा से मुतवस्सिल हों, रसूल से मदद मांगें और रसूल से कहें या रसूल खुदा, अगर आज तक हम जबान से सिर्फ या रसूल अल्लाह कहते थे, अब वो या रसूल अल्लाह हमारे दिलों में आ जाए कि अब हम दिल से भी कहें या रसूल अल्लाह, हमारा हर अमल कहे या रसूल अल्लाह, हमारा किरदार कहे या रसूल अल्लाह, हमारी रफ्तार, हमारी जिंदगी, पूरी हयात हमारी कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यानी हमारे आमाल सारे इताअत रसूल में गुजरे। हाँ बिल्कुल, रसूल ने कहा या अली तो हमने भी कहा या अली। हाँ भाई, रसूल ने कहा या अली मदद, खैबर में अली से मदद मांगी तो हमने भी कहा या अली मदद, रसूल की इताअत कर रहे हैं। रसूल ने कहा जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, हम रसूल की इताअत कर रहे हैं, हम भी अली को मौला मान रहे हैं। लेकिन रसूल ने बहुत सारी दूसरी बातें भी तो सिखाई, रसूल खुदा ने और बहुत सारी चीजें सिखाई जिनको कभी कभार हम उस पर अमल नहीं करते, भुला देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, कभी तो बाज लोग जाहिल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजालिस सुनी है बचपन से, इतनी मजालिस सुनी है कि अब तो वो मंजिल तकरीबन नजर नहीं आती कि कोई आदमी कहे मुझे मालूम ही नहीं था, मैं जाहिल था, मेरे इल्म में नहीं था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को बहुत सारी चीजों का इल्म है, लेकिन बस वही बात है कि सिर्फ जबानी पैरोकार हो जाते हैं। कभी कभार हम अमल के साथ दिखाएं या रसूल खुदा हम आपके पैरोकार हैं। देखिए रसूल की जिंदगी में, अहले बैत की जिंदगी में देखिए एक सबसे जो कमाल की चीज जो नजर आती है वो है ईसार, वो है कुर्बानी। ये अचानक अभी मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि अब सेंसबेरी जा रहे हैं खरीदारी के लिए, टेस्को जा रहे हैं, एस्टा जा रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है, हर आदमी चीजें उठा के ले जा रहा है कि भाई मैं अपने पास घर में कुछ रखूं। लेकिन अहले बैत वो हमें सिखा रहे हैं कि भाई अहले बैत का पैरोकार कैसा है। भाई अहले बैत ने तो ये सिखाया कि भाई घर में रोटी इतनी थी कि अपने घर वालों के लिए ही थी, लेकिन फकीर आ गया फकीर को दे दी, यतीम आ गया यतीम को दे दिया, असीर आ गया असीर, यानी यह नहीं कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ क्या माहौल नजर आ रहा है कि भाई सैक्रिफाइस नहीं करना, भाई टॉयलेट पेपर उठाने पर झगड़े हो रहे हैं कि ये मैं उठाऊं, ये मेरा है, ये मेरा हिस्सा है, इस पे पहले मैंने हाथ रखा। ये माहौल जो है ये वो इस्लामी माहौल नहीं है। इस्लामी माहौल में क्या है, ईसार है, कुर्बानी है। आप यही माहौल देखिए, अभी तो यहाँ पे वो कोरोना वायरस तो शुरू भी नहीं हुआ जिस अंदाज से ईरान में नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे सैक्रिफाइस नजर आ रही है, अभी कुर्बानी दी जा रही है कि भाई डॉक्टर्स माशाल्लाह कुर्बानी दे रहे हैं, या बेचारी नर्सिस कुर्बानियां दे रही हैं, मोमिनीन आपस में दुकानों की तस्वीरें वीडियोज जब देखी जा रही है तो माशाल्लाह हर चीज भरी हुई है। हर एक इंसान अपने बारे में यकीनन सोचे, अपनी लाइफ जो है उसके बारे में। इस्लाम ने मना नहीं किया कि नहीं सोचो, लेकिन इस्लाम ने यह कहा कि सैक्रिफाइस भी, इस्लाम ने सिखाया कि तुम्हारे अंदर सैक्रिफाइस ईसार भी होना चाहिए। कि भाई ठीक है, ईसार के दर्जात हैं, एक दर्जा यह है कि आपने एक रोटी है, आपने आधी रोटी किसी और को दी, आधी अपने पास रख ली। एक दर्जा जो अहले बैत ने सिखाया कि भाई एक ही रोटी हो, पूरी रोटी गरीब को दे दी, अपने आप को नहीं सोचा कि भाई मैं अपने पास क्या रखूं, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा सो जाऊंगा। हाँ, अगर उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो आधी रोटी वाली मंजिल तो हम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप लोग जो चाह रहे हैं बाजार से जाके खरीद सक रहे हैं, लेकिन इन हालात में रसूल से सीखिए, रसूल खुदा की इताअत अमल से कीजिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो बेचारे छोटे छोटे शहरों में हैं, छोटे छोटे मुल्कों में हैं, गरीब गरीब शहरों में हैं, गरीब गरीब मुल्कों में, कहीं और अफ्रीका वगैरह के बारे में न सोचिए, कम से कम अपने ही मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में सोचिए कि कितने मोमिनीन बेचारे हैं जो बेचारे इन हालात की वजह से अब परेशान हैं। बेचारे इन हालात की वजह से वो बेचारे रोजाना कमाते थे, अब जनाब जब मुल्क बंद हो गया, जब शहर बंद हो गया, अब बेचारे क्या करेंगे। वो एक क्लिप मैंने देखा था, मैंने दोस्तों को भेजा भी कि एक छोटी सी बच्ची है, वो जनाब जो पैसे उसने जमा किए थे अपने लिए, वो जाके अपने किसी पड़ोसन सहेली जो है उसके बाप को दे रही है, क्योंकि वो बेचारा डेली काम करता था और अब जनाब वो काम कर नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। तो छोटी बच्ची उसमें सिखा रही थी कि देखिए हकीकी रसूल के चाहने वाले ऐसे होते हैं कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते कि भाई मेरा घर भरा हो, भाई मेरा स्टॉक फुल हो, मेरे पास टिश्यू पेपर काफी हो, मेरे पास दूध के शीशे काफी हो, मेरे पास दालें चावल और ये आटा माटा खूब हो। नहीं नहीं अच्छी बात है, अपने पास भी रखो, इस्लाम मना नहीं कर रहा जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो भी ना खरीदो, ये इस्लाम नहीं कह रहा। लेकिन इस्लाम ये भी सिखा रहा है, रसूल खुदा ये भी सिखा रहा है कि देखो ए मेरे चाहने वालों, मेरे आशिकों, मेरे पैरोकारों, देखो जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो दूसरों के बारे में भी सोचो, दूसरों की औलाद के बारे में भी सोचो। ये वक्त है, ये मंजिल है कि अब देखा जाए कि हम कितना अपने बारे में सोच रहे हैं, कितना दूसरों के बारे में। अगर डेली जाके हम 50 पाउंड की खरीदारी कर रहे हैं अपने लिए, तो भाई कम से कम 5 पाउंड निकाल के रख लें उन बेचारों के लिए जो पाकिस्तान में गरीब गरीब इलाकों में रह रहे हैं और 10-15 दिन तक बेचारे अब काम नहीं कर पाएंगे, अल्लाह जाने आगे क्या होगा, तो उनको हम भेज दें, पैसे जमा करके उन बेचारे गरीबों की मदद करें। ये है रसूल का हकीकी पैरोकार, सिर्फ जबान से नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जश्नों में हम आते हैं और बहुत बड़ी नेमत है कि हम मजालिस में आते हैं, जश्नों में आते हैं। ये एक अल्लाह का करम है हम पर कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल, पूरा साल कभी विलादत है, कभी शहादत है और मुसलसल अहले बैत के साथ कनेक्टेड है। लेकिन देखिए अक्सर नजर आ रहा है कि बेचारे लोग सिर्फ जबानी कनेक्टेड है, सिर्फ जबा से अली अली करते हैं, सिर्फ जबा से रसूल को बुलाते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ और बैठा हुआ है। कभी पैसा बैठा हुआ है, कभी खुदखाही बैठी हुई है, कभी सेल्फिशनेस बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हमारे दिल की गहराइयों में अली मौला का नाम होना चाहिए, हमारे दिल की गहराइयों में रसूल का नाम होना चाहिए। रसूल हमारे लिए उस्वाए हसना है, रसूल की पैरवी करो। अब आइए 2-4 मुख्तसर इशारा करूं, इंशाल्लाह 8:30 तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इशारा करके बस इंशाल्लाह गुफ्तगू को खत्म करूं। एक मर्तबा अब रसूल की पैरवी करनी है, रसूल का आशिक, रसूल का चाहने वाला कौन है, हकीकी चाहने वाला, जबानी नहीं। रसूल का चाहने वाला वो है जो रसूल की इताअत करता है। अब रसूल की इताअत करते हैं, रसूल खुदा से सीखते हैं। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में थे। कहा बाबा जान जरा कुछ बातें नाना की बताई। हालांकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के साथ थे, बड़ा अरसा गुजरा था, तकरीबन 6 साल के करीब नाना के साथ टाइम गुजरा था। तो अब फिर भी मौला हुसैन ने कहा कि बाबा आप तो माशाल्लाह ज्यादा अरसा गुजार चुके हैं नाना के साथ, आप कुछ बताइए नाना के कुछ वाकयात, नाना जिंदगी कैसे गुजारते थे, नाना घर में कैसे होते थे, नाना घर के बाहर कैसे होते थे, नाना दोस्तों में जब बैठते थे असहाब में तो नाना क्या किया करते थे रसूल खुदा के मुतालिक। जाहिरी सी बात है क्योंकि मौला हुसैन का मुख्तसर अरसा गुजरा और रसूल हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का ज्यादा अरसा गुजरा, तो अब अल्लाह के रसूल का इंट्रोडक्शन कौन कर रहे हैं, मौला अली। मौला अली सुना रहे हैं रसूल की जिंदगी, रसूल की सीरत, और किसे, अपने प्यारे बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। मुख्तसर अगर वक्त रहा तो सारी बातें, अलबत्ता लंबी हदीस है लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर इशारा करता चलूंगा। अल्लाह के रसूल, अब मौला हुसैन ने पूछा कि बाबा अली घर में उनका क्या स्टाइल था। अच्छा आप जानते हैं हमारी जिंदगी यही है कि घर में को अलग स्टाइल है, बाहर अलग स्टाइल है, और जनाब लोगों के साथ अलग स्टाइल है, दोस्तों के साथ अलग स्टाइल है। अब रसूल से सीखना है कि रसूल का क्या तौर तरीका था, रसूल की जिंदगी क्या थी, घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे। तो अब मौला अली फरमाते हैं कि बेटा हुसैन, तुम्हारे नाना अली जब घर में दाखिल होते थे तो उन्होंने अपने घर के टाइम को 3 हिस्सों में तब्दील किया था। ये अल्लाह के रसूल जब घर में आते थे, मस्जिद से, बाहर से, जंग से, जहां से भी जब घर आते थे, जब घर में होते थे तो घर का जो टाइम था 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे 15 घंटे जितने घंटे घर में होते थे, घर के टाइम को अल्लाह के रसूल 3 हिस्सों में तब्दील करते थे। अब आइए रसूल से सीखें कि हम भी जब घर आए तो अपने घर में आकर अपने घर के जो वक्त हैं, जो टाइम है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे लोग घर ही में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा टाइम फिर वापस आएगा जब आपने जॉब पे जाना है, कॉलेज पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा मौका है इसको प्रैक्टिस करने का। लेकिन जब आप वापस फिर नॉर्मल लाइफ में भी वापस चले जाएंगे, उस वक्त भी याद रखिए, रसूल खुदा से सीखिए, रसूल खुदा इस तरह से अपने घर में होते थे, अपने घर के वक्त को 3 हिस्सों में तब्दील कर दिया। पहला हिस्सा, فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا جب گھر آتے تھے تو گھر کا ایک حصہ تین حصوں میں بدل دیا نا, ٹائم جو گھر میں تھا تین حصوں میں بدل دیا, ایک حصہ بیٹا تمہارے نانا رسول خدا اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے. اللہ کے لیے کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھنے میں, ذکر خدا کرنے میں, قرآن پڑھنے میں. اپنے بچوں کو سکھائیے, تربیت عملی ہوتی ہے, اللہ کے رسول سے سیکھیے, پھر اپنی نئی نسل اپنی جنریشن کو سکھائیے. اب ماں باپ دیکھا جناب, بعض گھروں میں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی نماز کے لیے, جیسے نماز گیا چھوٹا سا کوئی کمرہ انہوں نے نماز کے لیے رکھ دی, بھائی یہ نماز خانہ ہے, یہاں آ کے نماز پڑھی جائے گی. بچوں کو سکھایا جائے کہ بھائی یہاں نماز پڑھنی ہے ہم نے, وہ ایک تربیت. بھائی جیسے گھر میں آ گئے کوئی ٹائم مقرر کر دیں کہ بھائی یہ ٹائم نماز کے لیے, یہ ٹائم قرآن پڑھنے کے لیے. جیسے ہم نے یہ زیارت عاشورہ کا پروگرام شروع کیا کہ بھائی 7:30 بجے زیارت عاشورہ کے لیے انشاءاللہ جمع ہوں. اب جو زیارت عاشورہ والے مومنین ہیں وہ کوشش یہ کریں جب زیارت عاشورہ پہ آئیں, پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹرین کریں کہ بیٹا وضو کر کے آؤ, زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے, اپنے ہی بچت کے لیے, اور انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ایک خاص جگہ رکھ لیں, ایک خاص ٹائم رکھیں کہ بھائی اس ٹائم پہ میں انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا, صبح جب اٹھوں گا تو دعائے احد پڑھوں گا یا زیارت آل یاسین پڑھوں گا. یہ بچوں کو ٹرین کیجئے. اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہو رہے, ہمارے بچے نمازی نہیں ہو رہے, شکایت کرتے بچہ گمراہ ہو گیا, بچہ غلط کام کر رہا ہے, بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, بچہ فلاں کام کر رہا ہے. دیکھیے آپ کے ہمارے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں, بلکہ حدیثیں بتا رہی ہیں, روایات بتا رہی ہیں کہ ہمارے بچے ویسے ہوتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ دین عمل کر کے دکھائیں گے تو بچے ہم سے سیکھیں گے, اور اگر ہم خود ہی سست پڑ جائیں, ہم خود ہی دعائیں نہ پڑھیں, ہم خود ہی نیک اعمال نہ کریں, ہم خود ہی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کمزور ہوں, تو ظاہری سی بات ہے, البتہ یہ صرف ایک منزل ہے, دوسری منازل بھی ہیں. یہ بھی احتیاط کریں کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں, آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں. کبھی کبھار ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن پھر وہ ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کا دوست کون ہے, ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بہترین دوست ہو جائیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کے بہترین دوست ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے بچہ دوست کو ہر بات بتاتا ہے, پھر اپنے ماں باپ کو بتائے گا, باپ بھائی تو فٹ بال کھیلنے جاؤ اپنے بچے کے ساتھ, کرکٹ آتی ہے کرکٹ کھیلنے جاؤ, اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارو, انشاءاللہ کس طرح اشارہ ہوگا. تو پہلا حصہ میرے بیٹے حسین تمہارے نانا رسول خدا اللہ کے لیے مختص کر دیتے تھے. دعا ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ رات تھی, کہتی میں اٹھی میں نے دیکھا بستر پہ اللہ کے رسول نہیں ہے, تو میں پریشان ہو گئی اللہ کے رسول آدھی رات کو کہاں گئے, تو میں تلاش کرنے نکلی تو میں نے دیکھا گھر میں ایک جگہ پر اللہ کے رسول بیٹھے گر گرا کے رو رہے ہیں, ہزاروں قطار گریا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے خالق میرے مالک, جو دعائیں جو ذکر اللہ کے رسول کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. اب بیوی ام سلمہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت صرف امام بارگاہ میں, صرف مسجد میں, نہیں نہیں مسجد میں بھی عبادت کرو, گھر میں بھی عبادت کرو, بلکہ وہ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ مجالس میں بتایا کہ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ عبادت ہو, جگہ جگہ عبادت ہو, جہاں جا رہے ہیں عبادت ہو, تو آپ کے ہر عمل میں نیت اللہ ہو, میرے اللہ یہ کام کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر, میرے اللہ بیٹے کو دیکھ رہا ہوں مسکرا کر تیری رضا کی خاطر, میرے اللہ بیوی کو دیکھ رہا ہوں تیری رضا کی خاطر, میرے اللہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر, میرے اللہ میں کام پہ جا رہا ہوں تیری رضا کی خاطر, تو قدم قدم آپ کا عبادت بن جائے گا. وہ تو آسان ہے, لیکن گھر میں خاص ایک وقت رکھیے عبادت کے لیے, اللہ کے رسول کے عمل سے پیروکار بنیے, صرف زبان کے ساتھ نہیں. وہ مشہور میں اکثر جملہ کہتا ہوں, زبان کے ساتھ دل بولا, علامہ عرفان عابدی صاحب کا جملہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. اب آج یہ کہیں گے زبان کے ساتھ دل بولا یا رسول اللہ یا رسول اللہ, صلوات پڑھی باواز بلند, اللہم صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج. ایک حصہ بیٹا بیٹا حسین تمہارے نانا رسول خدا, ایک حصہ جب گھر میں آتے تھے, ایک حصہ ان کا عبادت کے لیے تھا, اور دوسرا حصہ جب اللہ کے رسول تمہارے نانا بیٹا حسین جب گھر میں آتے تھے تو دوسرا حصہ ان کا گھر والوں کے لیے تھا, بیوی کے لیے. ابھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اے مرد جب تم گھر میں آتے ہو صبح 7 بجے نکل گئے کام کے لیے, جیسے میں نے کہا ابھی تو ماشاءاللہ بہت گھر میں ہوں گے, انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا, घर से ही काम करना है, लेकिन जब फिर नॉर्मल लाइफ आ जाएगी तो सुबह 7 बजे निकले, 8 बजे निकले, फिर रात को 7-8 बजे आए, और बाज लोग घर आके फिर वही काम कर रहे होते हैं। घर आके फिर जनाब सोशल मीडिया पे लगे हुए, ईमेल्स पे लगे हुए। बाज लोग तो जनाब 7 बजे गए, रात को 11-12 बजे बाज दोस्तों से बात होती है तो कहते जनाब 10 बजे हमने फोन किया, 11 बजे फोन किया, कहा मौलाना अभी हम वापस आ रहे हैं घर। तो मैं ये सोचता हूँ फिर आपने बच्चों को कब टाइम देना है, बीवी को कब टाइम देना है। अल्लाह के रसूल जब घर में आते थे एक वक्त इबादत के लिए, एक वक्त किसके लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। अब अल्लाह के रसूल कितने अजीम हैं, रसूल अल्लाह वो अजीम हस्ती है कि जिब्रील आता है उनसे गपशप करता है, जिब्रील उनसे बातें करता है, लेकिन वो नबी जो जिब्रील अमीन वही रसूल हजरत जिब्रील से बात करते हैं, वही नबी अपनी बीवी के पास आके कहते हैं मुझसे बात करो, अपनी बीवी से बात करते हैं, अपनी बीवी को वक्त देते हैं। और ये मुख्तलिफ रिवायात है, इशारा सिर्फ करूं कि अहदीस रसूल बताती हैं, अहले बैत की सीरत बताती है कि मर्द के लिए वाजिब है कि अपनी बीवी से बात करे, उसके साथ टाइम गुजारे, न सिर्फ ये बल्कि अपने जाहिर को भी इतना खूबसूरत बनाए अपनी बीवी के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीवी कहे कि भाई तू अच्छा क्यों नहीं लग रहा, अतर लगाए, अच्छे कपड़े पहने। रिवायत में मिलता है कि एक शख्स को अल्लाह के शेपर्ड था, जनाब वो कहीं जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा या रसूल्ला घर जा रहा। रसूल खुदा ने उसको देखा कपड़े बेले, हालत अजीब, जाहिर बात है सुबह से काम किया बेचारा, तो आपकी तरह तो जनाब गाड़ी पे चढ़ के तो नहीं गया। वो बेचारा शेपर्ड था, उस जमाने का माहौल था, सहरा बयाबान था, कपड़े मेले। कहा या रसूल खुदा आप ऐसे ही कपड़ों के साथ घर जाऊंगा? कहा नहीं, जब भी कल से आओ एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आओ, जब काम खत्म हो कपड़े चेंज करो, अच्छे कपड़े पहन के घर जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ तो गदले न लगो, बदसूरत न लगो, खराब न लगो। मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, यानी अल्लाह के रसूल हमें सिखा रहे हैं कि देखो एक हिस्सा अल्लाह के लिए तो एक हिस्सा बीवी के लिए, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, बच्चों के साथ खेलिए, यह रसूल की सीरत है, इस पर अमल कीजिए। हाँ फिर फरमाया एक हिस्सा अल्लाह के रसूल ने अपने लिए भी रखा था कि भाई अब ये भी हमें सिखा रहे हैं कि देखिए जनाब आप जब आ रहे हैं घर में बाहर से काम करके, कोई आपका पर्सनल अगर काम है तो थोड़ा सा मुख्तसर उसके लिए भी आप वक्त रहे। ये रसूल की सीरत सिखा रही है। अब मौला अली बता रहे हैं रसूल का इंट्रोडक्शन मौला हुसैन को, वो एक्चुअली हमें सिखाया जा रहा है कि देखो जब तुम घर में आओ तो कैसा तुम्हारा रवैया रहे, एक हिस्सा अल्लाह के लिए, एक हिस्सा भी बच्चों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। अच्छा अब मौला हुसैन को मौला अली बताते हैं, बेटा हुसैन तुम्हारे नाना जब बाहर, अच्छा घर से बाहर बाज लोगों का अलग रवैया होता है, घर के अंदर अलग होता है, लेकिन रसूल की सीरत देख, घर में है तो घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत, अब बाहर है तो क्या फरमाया, तुम्हारे नाना हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराहट, सबके साथ प्यार से पेश आना, सबके साथ अखलाक से पेश आना। मुख्तलिफ वाकयात है, इशारा सिर्फ करूं उस खातून का वाकया आप सबने बचपन से सुना है, बच्चे बच्चे को याद है कि जो कचरा फेंकती थी और अल्लाह के रसूल ने जब एक मरतबा देखा वो नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कहाँ है, कहा बीमार हो गई है। अब जब बीमार की इयादत के लिए आ गए, कौन बीमार, वो बीमार जो रसूल पे कचरा फेंकती थी, तो वो अखलाक रसूल देख के मुसलमान हो गई। ये है अखलाक रसूल, जैसा घर में अच्छा अखलाक वैसा घर के बाहर अच्छा अखलाक। बाज लोगों का ये हाल है ना कि भाई घर में अजीब है, सबसे लड़ना भड़ना, बाहर जना बड़े अच्छे लगते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। नहीं नहीं घर में भी अच्छा अखलाक, बाहर भी अच्छा अखलाक। मुख्तसर करके आगे बढ़ूं, अब तीसरी बात, और ये तीसरी बात और फिर जहमत तमाम, 8:30 से टाइम आगे जा चुका है। कहा कि बेटा हुसैन तुम्हारे नाना जब अपने असहाब के साथ बैठते थे, हम अपनी मिसाल दे जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अच्छा कई लोग माशाल्लाह मस्जिद में भी बड़े अच्छे नेक, घर में भी बच्चों के साथ भी सुधरे हुए, लेकिन जब पुराने दोस्तों से मिलते जुलते हैं तो जनाब पुरानी बातें कुछ याद आ जाती हैं, तो जनाब उनका बात करने का स्टाइल अजीब गरीब। हमने देखा भाई दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो ना अदब है बात करने में, ना अखलाक है, ना ही जनाब उसमें कोई हया है, नहीं हया सिर्फ पहनने में नहीं, हया गुफ्तगू में भी होती है, और जनाब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब रसूल खुदा जब अपने असहाब के साथ बैठते थे, अपने अल्फाज में ये कहूं जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, यानी हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए। कहा मेरे बेटे हुसैन तुम्हारे नाना रसूल खुदा जब अपने असहाब के साथ बैठते थे तो उस मजलिस में जहां पर रसूल खुदा अपने असहाब के साथ होते थे उसमें 4 चीजें होती थी, کیا چار چیزیں؟ فرمایا ایک فَمَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَدَقَةٍ وَأَمَانَةٍ. یہ دیکھو بیٹا حسین, تمہارے نانا جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو اس میں حلم ہو. کیا مطلب؟ یعنی غصے پہ کنٹرول. کئی مردہ دیکھا دوست آپس میں غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, لڑ جاتے ہیں. اور حیا, کبھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جناب برا لفظ استعمال کرے یا بدتمیزی کرے. صدق, سچائی. اور امانت, یعنی امانت میں خیانت نہ ہو. دیکھیے حلم کیا ہے, غصے پہ کنٹرول. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہا یا رسول خدا فقیر ہوں, پیسہ دیجیے, مسجد میں دے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں دینے کو. تو وہ شخص غصے میں آتا ہے اور نعوذ باللہ رسول خدا کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے جو بیان نہیں کر سکتا. اور ایسی بدتمیزی کہ ہم اور آپ ہوتے وہ تھپڑ مار کے نکال دیتے. 10-20 کیا اتنے اصحاب بھی ساتھ میں تھے, بلکہ اصحاب غصے میں آ گئے. کہا یا رسول خدا اجازت دیجیے, ہم اس کا حشر نشر کریں گے. بدتمیز کہیں کا آپ کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے, ایسا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر. اللہ کے رسول نے منع کر دیا, کہا نہیں اسے کچھ نہ کہو. نماز ختم ہوئی, نماز کے بعد اس فقیر کو کون, وہی بدتمیز جس نے بدتمیزی کی, حلم یعنی غصے پہ کنٹرول ہمیں سکھا رہے ہیں, اسی کو گھر لے گئے, کھانا کھلایا, رات کو سلایا. ہم ایسا کریں گے جو ہمیں بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ برا بھلا چلے, کیا ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں گے؟ لیکن رسول یہ سکھا رہے ہیں, یعنی اگر رسول کا حقیقی پیروکار ہوں میں تو مجھے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ غصے پہ کنٹرول کروں. آج ہمارے امام بارگاہوں میں سینٹرز میں جھگڑے کیوں ہیں کہ بھائی غصے پہ کنٹرول نہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا جناب, وہ دشمنیاں سالوں سال چلتی ہیں. فیملیز میں یہی ہے. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں مجلس حلم یعنی غصے پہ کنٹرول, اور حیا یعنی ایسی کوئی بات, کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی ایسی بدتمیزی کر لے, کوئی ایسی گالی دے دے, کوئی ایسی بری بات بے حیائی کی کر دے. مجلس حیا, جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس میں کوئی ایسی بری بے حیائی کی بات نہ کی جائے. اور کیا, صدق, سچائی, جھوٹ نہ بولا جائے. آج ہم پانی کی طرح جھوٹ بولتے ہیں, مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. اور آخر میں کیا کہا, امانت یعنی خیانت نہ ہو. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ میں نے مجلس میں بھی کہا تھا فاطمیہ کے عشرے میں اس سال, کہ دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم امانت میں خیانت کہاں کریں گے, ہم تو کسی کا پیسہ مال نہیں چوری کریں گے, ہم تو کسی کا مال نہیں کھائیں گے, ہم تو شریف ہیں. الحمدللہ یہ بات تو الحمدللہ نظر آ رہی ہے, بڑے شریف مومنین ہیں. لیکن امانت میں خیانت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو باتیں اس وقت میں نے کہی تھی وہ نہیں کہوں گا, آج ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر ایک مومن کی غیبت ہو رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں, امانت میں خیانت کر رہے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ اپنی مجلس کو, مجلس یعنی وہ مجلس نہیں جسے ہم مجلس کہتے ہیں, یعنی دوستوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہیں, جب دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, اس میں سیرت رسول کو لے کر آئیں. کیا حلم, غصے پہ کنٹرول, کیا صدق, سچائی, کیا حیا, اور کیا امانت. جب یہ چار چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کام پر ہے, بزنس میں, جہاں پر بھی, یہ چار چیزیں آ جائیں, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. بس یہی مسئلہ ہے کہ ہم سنتے تو بہت ساری باتیں ہیں, بلکہ شاید آپ میں سے بہت ساروں کو بہت ساری یہ باتیں معلوم بھی ہوں گی, لیکن عمل میں کمزور ہیں. آئیے آج یہ عید کی رات ہے, مولا رسول خدا سے مدد مانگیں کہ میرے مولا, میرے آقا, آج ہمیں عیدی دیجئے. اور عیدی جو ہم چاہتے ہیں وہ بس یہی ہے کہ آج ہمیں اپنا حقیقی پیروکار بنا دیجئے, کہ ہم عمل سے کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کہیں, یا رسول خدا آپ کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق ملے. اور پھر جو پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے جو زیارت عاشورہ کا جو 40 دن کا پروگرام شروع کیا, اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے مختلف روایات بتاتی ہیں کہ بڑی سے بڑی پرابلمز میں یہ زیارت عاشورہ جو ہے یہ سلوشن ہے. تو انشاءاللہ جو مومنین سن رہے ہیں جو زیارت عاشورہ میں نہیں آئے, تو وہ کوشش کریں کہ زیارت عاشورہ کا عمل شروع کر دیں 40 دن تک انشاءاللہ. اگر وہ 7:30 بجے نہیں آ سکتے تو گھر میں بچوں کو بٹھائیں, بیوی کو بٹھائیں, اور جناب ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیں. سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں جو کہ بیوی سلام اللہ علیہا نے سکھایا ہے, پھر اپنے لیے دعا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں. اور انشاءاللہ دعاؤں میں سب سے پہلی دعا یہ ہو کہ میرے اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور فرما. آپ کو عید مبعث بہت بہت مبارک ہو, اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. التماس دعا, خدا حافظ.